بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جو تربیت فرماتے تھے، اور ان کے واسطے سے گویا قیامت تک آنے والی امت محمد تربیت، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تربیت کے لیے مختلف انداز اختیار فرماتے تھے. انہی مختلف اندازوں میں سے یہ انداز بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے روشناس کرتے تھے. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو اللہ تعالی کی نعمتوں کی پہچان کراتے تھے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ نعمتیں ضائع اور برباد نہ ہوں، خاص طور پر اس کی تاکید فرماتے تھے. چونکہ انسان کے ساتھ شیطان اور نفس لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت آدمی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کو ایسا کام جو اس کے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو کرنے نہ پائے، ان کی بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا امت کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتے تھے کہ بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کی ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انہی مختلف ارشادات میں سے دو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی اور نقل کرنے والے ہیں. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کے شروع میں سب سے پہلی روایت یہی ذکر کی ہے. یہ بھی حضرات محدثین رحمہم اللہ کا ایک خاص انداز ہے. رقاق یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو جمع کا صیغہ ہے، بہو وچن جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، اس کا جو ہے ایک وچن واحد کا صیغہ آتا ہے رقیق. رقیق کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے باریک اور پتلا. یہاں مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ارشادات اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ باتیں جو انسانوں کے دلوں کو نرم کرنے والی ہیں، گویا ان باتوں کو سن کر دل نرم ہو، دنیا کی محبت کم ہو، غفلت ختم ہو، آخرت کو حاصل کرنے کی طرف بندہ متوجہ ہو، حضور کے انہی سارے ارشادات کو حضرات محدثین اپنی کتابوں میں جہاں دوسرے ارشادات کو پیش کرتے ہیں، ایک مخصوص عنوان کتاب الرقاب کا قائم کر کے اس عنوان کے ماتحت اس طرح کی تمام حدیثوں کو وہ حضرات پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں وہ دراصل غفلت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. آدمی اگر غفلت سے باز آ جائے، ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہو اور دنیا کی محبت چھوڑ کر آخرت کی طلب میں مشغول ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نوبت نہ آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مختلف ارشادات اور اپنی مختلف باتوں کے ذریعے سے امت کو ان چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرتضیٰ نے فضائل صدقات کے دوسرے حصے میں زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے بیان میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے، اور اس قسم کی بہت ساری روایتیں مشکات کے حوالے سے حضرت نے پیش کی ہیں، اور ان کی بہت عمدہ تشریح اور تفصیل کے ساتھ کی ہے. جو لوگ سنتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ان کو سننے کی وجہ سے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ بار بار ایسی چیزوں کو پڑھا کریں تاکہ دنیا کے مشاغل میں مشغولی کے نتیجے میں ہمارے دلوں کے اوپر غفلت کے جو پردے پڑ جاتے ہیں وہ ذرا ہٹیں اور آخرت کی طلب پیدا ہو اور اللہ کی دی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس زندگی کی قدر و قیمت کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی اہمیت کو ہم محسوس کریں. بہر حال ابھی جو دو روایتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس، دونوں روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے منقول ہیں. پہلی روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے معاملے میں لوگ مغبون تھی. مغبون، یہ اہل علم یہاں ہماری اس مجلس میں موجود ہیں، لفظ عربی زبان کا ہے، یہ غبن سے بنا ہے. عربی زبان میں غبن کا دو ترجمہ ہوتا ہے، دو معنی، ایک تو دھوکا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے معاملے میں لوگ بہت دھوکے میں ہیں. دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو حاصل ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کے متعلق بندے اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، نفس اور شیطان کے بہکاوے اور ان کی غفلت میں ڈالنے کی وجہ سے گویا یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، اور ان نعمتوں سے گویا فائدہ اٹھانے کے معاملے میں وہ ذرا سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کیا جلدی ہے، دیکھی جائے گی، ابھی ذرا اللہ نے موقع دیا ہے، جوانی ہے، دولت ہے اور فرصت ہے، تو ذرا مزے اڑا لو، راحتیں حاصل کر لو. یہ نفس اور شیطان ہر وقت آدمی کو اسی دھوکے میں رکھ کر کے اللہ کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھانے دیتے نہیں ہیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، متوجہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی یہ دو نعمتیں ہیں، بہت عظیم نعمتیں ہیں، لیکن نفس اور شیطان کے بہکائے کی وجہ سے غلط فہمی میں مت رہنا، یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دنیا ہی ہمیشہ رہنے والی نہیں،
اور دنیا کی جو چیز ہے کوئی بھی چیز ہمیشہ نہ رہنے والا, کل من علیہ فان, انسان خود ہمیشہ رہنے والا نہیں, تو جو کچھ انسان کو ملا ہوا ہے وہ بھی کہاں ہمیشہ رہے گا. اس لیے گویا شیطان اور نفس کے بہکاوے کی وجہ سے اس دھوکے میں رہ کر کے جو ہے غفلت سے کام مت لینا, بلکہ جلدی سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں نکل جائیں. اور غبن کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے گھاٹا اور نقصان. تو مقبول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے گویا فائدہ اٹھانے کے معاملے میں لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں, یعنی اللہ کی ان نعمتوں سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کی جیسی قیمت وصول کرنی چاہیے. آپ کے پاس کوئی چیز ہے, مطلب ایک چیز ہے گھڑی, اس گھڑی کی جو مالیت ہے, جو قیمت ہے, اگر آپ اس قیمت کو کسی کو دے کر حاصل کریں, پوری مثلا 300 روپے کی گھڑی ہے, 300 روپے میں بیچی, تو یوں کہا جائے گا کہ نہ کھوٹ ہوئی نہ نفع ہوا. اور اگر کچھ زیادہ قیمت میں بیچی تو جتنی زیادہ میں بیچو گے اتنا نفع کہا جائے گا, اور اگر کم قیمت میں بیچی تو جتنی کم قیمت میں بیچو گے اتنا گھاٹا ہے. وہ اس گھڑی کی جتنی مالیت تھی اس مالیت سے کم آپ نے بدلے میں پایا تو وہ کیا کہلائے گا؟ گھاٹا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو دی ہیں ان نعمتوں کے بدلے میں ہم جو حاصل کر رہے ہیں وہ چیز اگر کم درجے کی ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ بہت گھاٹے اور نقصان میں ہے. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ, تندرستی اور فرصت. اللہ تعالیٰ نے یہ جو تندرستی عطا فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, خاص طور پر جوانی کے زمانے میں. عام طور پر آدمی جو ہے جب وہ یہ بڑھاپے کے قریب جاتا ہے, جوانی ڈھلنے لگتی ہے, اس وقت پھر بیماریاں آتی ہیں, ورنہ 40-45 سال تک تو عموماً آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے. تو گویا یہ تندرستی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور فرصت, اللہ نے جو موقع دیا ہے, اللہ نے ہم کو جو وقت دیا ہے, اس وقت سے ایسا ہمیں کمانا چاہیے, ایسا فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہو. چنانچہ دوسری روایت میں اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں اقتنم خمسن قبل خمس, پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, شباب کا قبل حرمے کا, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. دیکھو جوانی کے اندر جیسا کہ میں نے کہا آدمی کے جو قوا ہوتے ہیں, آدمی کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف عطا فرمائی ہیں, جوانی کے زمانے میں وہ بڑے عروج پر ہوتی ہیں, بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, اور ان صلاحیتوں سے آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا متوجہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ کو جوانی اللہ نے دی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, ایک دن آئے گا کہ جوانی جائے گی اور اس کی جگہ بڑھاپا آئے گا, بڑھاپا آئے اس سے پہلے جوانی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اسی طرح آگے فرماتے ہیں وصحت کا قبل سقم, اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ تندرستی ہمیشہ رہے گی, نہیں, ایک وقت تک اللہ نے یہ نعمت دی ہے, پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس تندرستی کی جگہ بیماریاں لے گی, اور اس وقت آپ تمنا کرو گے کہ کاش وہ تندرستی جو اللہ نے صحت عطا فرمائی تھی دوبارہ لوٹ کر کے آوے. تو حضور فرماتے ہیں تندرستی کی اس نعمت کے متعلق یہ مت سمجھنا کہ ہمیشہ رہے گی, بلکہ एक वक्त आएगा कि बीमारी उसकी जगह लेने वाली है, उससे पहले उससे फायदा उठा लो। वह गिना का कबल फक्र का, और अपनी मालदारी को फकीरी से पहले, अल्लाह ने मालो दौलत दी है तो उस मालो दौलत से फायदा उठा लो, आखिरत को कामयाब बनाने की तदबीरें कर लो। ये दौलत हमेशा रहने वाली नहीं है, अगर मौत तक रही तो मौत के बाद तो हाथ से निकल ही जाएगी। और जो है फराग का कबला शुगले का, और अपनी फुर्सत को अल्लाह ने जो फुर्सत दी है उसको गनीमत समझो मशगूली से पहले, और हयात का कबला मौत का, अपनी जिंदगी को मौत से, जिंदगी जैसी भी है लूली लंगड़ी बारा, कुछ न कुछ आदमी का फायदा ही फायदा हो उसमें, कुछ नहीं। एक आदमी पड़ा हुआ बिस्तर पर न चल सकता है न फिर सकता है, तो जबान तो हरकत करती है, जबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़ सकता है। ये जिंदगी कितनी कीमती कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के नतीजे में उसके बदले में जो सवाब उसको हासिल होगा सारी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत सुलेमान अल्लाह नबीना वाली सलातो सलाम, अल्लाह ताला ने उनको एक मौजजा अता फरमाया था कि हवा को हुक्म देते थे तो पूरे दरबार के साथ हवा आपको जहां चाहते थे वहां ले जाती थी। गोया यूं समझिए कि पूरा प्लेटफार्म फिजा में उड़ रहा है, जहां चाहते थे जाते थे। अल्लाह ने आपको ये नेमत अता फरमाई कि आपकी बादशाहत भी ऐसी थी कि इंसानों ही पर नहीं बल्कि जिन्नों पर, चरी परी तमाम जानवरों के ऊपर आपकी बादशाहत चलती थी। एक मरतबा आप इसी तरह फिजा में अपने पूरे दरबार के साथ जा रहे थे, इस मंजर को देखकर एक बंदे मोमिन ईरान तक की ऐसा मंजर जब आदमी देखता है ना तो दिल में जो है रश्क पैदा होता है, क्या अल्लाह ने दिया है, काश हमें भी ये चीज मिल जाती। तो उस बंदे मोमिन को उनका ये मंजर देखकर दिल में रश्क आया, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अल्लाह नबीना वाली सलातो सलाम को उसके उस तसव्वुर और ख्याल से वाकिफ किया। तो हजरत सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया कि उतारो, उतारने के बाद हजरत सुलेमान अल्लाह नबीना वाली सलातो सलाम ने कहा कि किसी बंदे मोमिन का एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना, आले दाऊद यानी खुद हजरत इब्राहिम हजरत सुलेमान मुराद है कि सुलेमान की सल्तनत से बढ़कर के, ये सुभान अल्लाह इतना कीमती है कि सारी दुनिया उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। मैंने अर्ज किया कि कुछ नहीं तो सुभान अल्लाह तो पढ़ सकता है, पढ़े पढ़े ये भी इतना कीमती सरमाया है कि सारी कायनात उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमें जो नेमतें अता फरमाई है ये मुख्तलिफ शक्लों में, जवानी अता फरमाई, माल अता फरमाया, फुर्सत और अता फरमाई, तंदुरुस्ती अता फरमाई, जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह की इन नेमतों को अल्लाह की रजा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, ये जिंदगी के जो सहस चल रहे हैं ना, तो ये सहस जो है ना यूं समझियो कि ये एक एक सहस जो वो कीमती हीरे और मोती की हैसियत रखता है। तेरा हर सांस नखले मुसवी है, ये मद्दो जज्र जवाहिर की लड़ी है। ये जो सांस आदमी लेता है ना तो सांस ऊपर जाती आती है, तो शायर यूं कहता है कि ये तेरा सांस जो है वो हजरत मूसा अला नबीना वाली सलातो सलाम को जिस दरख्त में से अल्लाह ताला के कलाम की आवाज सुनाई दी थी, तो जाहिर है वो दरख्त कितना कीमती था। तो शायर यूं कहता है तेरी ये सांस जो है ये गोया हजरत मूसा अला नबीना वाली सलातो सलाम को जिस दरख्त से अल्लाह का कलाम सुनाई दिया था वो है, और ये जो ऊपर नीचे हो रही है सांस मद्दो जज्र ये जवाहिर की लड़ी है। हमारे हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी बड़े दर्द के साथ जो अकबर इलाहाबादी का ये शेर पढ़ा करते थे कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दूने उम्र की गर्दूने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। ये टिकोरे वाली घंटे वाली जो घड़ी होती है ना, 12 बजते हैं तो 12 टिकोरे पड़ेंगे। गोया हर हर घंटा गोया हमको ये खबर देता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक वक्त क्या हो गया, कम हो गया। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, ये घड़ी तुमको ये खबर देती है जब ये घंटे की आवाज आती है। गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी, ये तकदीर ने तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा कम कर दिया। हकीकत यह है कि ये हमारी जिंदगी गुजरती जा रही है, और ये जिंदगी जो है ना, ये ऐसा कीमती सरमाया है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके जरिए से आदमी ऐसी अजीम दौलत हासिल कर सकता है कि दुनिया की कोई दौलत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। देख, इसलिए जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के इन अवकात को ऐसे कामों में इस्तेमाल करें जो अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी के हों। देखो, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बतलाना चाहता हूँ कि हम एक मिनट के अंदर कितनी बड़ी दौलत हासिल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मर्तबा सूरज ग्रहण हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई। नमाज के दौरान कभी ऐसा हुआ कि आप आगे बढ़े और जैसे कुछ लेना चाहते, और नमाज के दौरान कभी पीछे हटे जैसा कि किसी चीज से अपने आप को बचाना चाहते। जब नमाज पूरी हो गई तो हजरात साहबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आज नमाज के अंदर हमने देखा कि आपने कुछ ऐसे काम किए जो कभी नमाज में आप करते नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत और जहन्नम का नजारा कराया। जहन्नम को जब देखा तो उसकी आग की तपिश से बचने के लिए मैं पीछे हटा, और जन्नत को जब देखा तो मैंने चाहा कि उसका एक खोसा अंगूर का तोड़ लूं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर मैं वो तोड़ लेता तो तुम लोग उसको कयामत तक खाते रहते तो भी खत्म न होता, क्योंकि वो जन्नत की नेमत है ना। तो जन्नत की नेमत ऐसी है जो कभी खत्म हो सकती नहीं। वह ये एक खोसा पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए कयामत तक क्या हो जाता। जहां उसकी खसूसियत यह होती कि जहां एक दाना तोड़ा ऑटोमेटिक दूसरा दाना खुद ब खुद उसकी जगह पर पैदा हो जाता। इस तरह गोया ये खोशा कयामत तक खत्म होने का नाम न लेता। तो जब जन्नत के एक खोशे का ये हाल है, एक खोशे का, तो एक दरख्त कितना कीमती होगा आप बताओ। और जब दरख्त एक खोशा इतना ये है तो पूरा दरख्त कितना कीमती होगा। और जन्नत के ये दरख्त कैसे हासिल किए जाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। आपने फजाइल जिक्र में सुना होगा कि हजरत इब्राहिम अल्लाह नबीना वाली सलात व सलाम ने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, अल्लाह नबीना वाला इब्राहिम सलात व सलाम, और ये कहना चाहिए। वह उनके सलाम का जवाब हम दे रहे हैं, और ये कहना कि जन्नत तो चटियल मैदान है, उसके दरख्त है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। यानी आदमी जितना ये पढ़ेगा उसके उतने दरख्त जन्नत के अंदर लग जाएंगे। आप घड़ी लेकर बैठ जाओ, एक मिनट में आप बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे तो अभी 40-50 मरतबा सुभान अल्लाह आसानी से पढ़ लेंगे। गोया एक मिनट में हम जन्नत के अंदर अपने लिए 50 दरख्त लगवा सकते हैं। जन्नत के दर आज दुनिया के अंदर आप को ऐसा बाग खरीदना चाहें जिसमें 100, 200, 500 आम के, चीकू के और दूसरे फलदार दरख्तों के फलदार दरख्त हो तो ऐसा बाग 2 पैसे में आएगा। लाखों रुपये खर्च करेंगे तब ऐसा बाग आप क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वो भी दुनिया का बाग। 2 दिन 2 महीने अगर उसको पानी नहीं पिलाया, उसकी खबर नहीं ली, तो वो बंजर होकर रह जाएगा। ये तो जन्नत का बाग, जन्नत के दरख्त आपको गया, आप दो मिनट में चार मिनट में 100-200 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ करके जन्नत के अंदर 200 दरख्त लगवा सकते हैं। आप बताओ ये दो मिनट कितने कीमती हुए। अल्लाह ताला ने ये जिंदगी अता फरमाई है, बड़ी कीमती है, उसको अल्लाह की रजा और खुशनुदी में इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसीलिए हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यमलाउल मीज़ान। लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब इतना ज्यादा है कि वो जिस तराजू में आमाल तोले जाएंगे, एक अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी तराजू उसके सवाब से क्या भर जाएगी। और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह यमलान मा बैन समावात वल, और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी पढ़ता है तो उन दोनों कलमों का सवाब इतना ज्यादा मिलता है कि जमीन और आसमान के बीच की पूरी फिजा सवाब से भर जाती है। ये तो हम लोगों को उसकी कदर नहीं। आज अगर यूं कह दिया जाए कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे तो ये पूरी मस्जिद नोटों से भर जाएगी, तो सब तस्बीह लेके बैठ जाएगी। नोटों की हमें कदर है ना, उसकी लालच है, और ये आखिरत के सवाब का जैसा शौक और रगबत होनी चाहिए, हिर्स होनी चाहिए, वो हमारे अंदर रही नहीं। हमारे वो असलाब थे कि खाने के वक्त में से भी कटिंग करके अल्लाह का जिक्र करते थे। आपने फजाइल सदकात में, फजाइल जिक्र में सुना होगा, अली जुर्जानी एक बुजुर्ग है कि जो रोटी के बजाय, रोटी खाने के बजाय सत्तू फांक लिया करते थे। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो जवाब में फरमाते हैं, मैंने हिसाब लगाया कि रोटी को चबाने वगैरह में जो वक्त लगता है, सत्तू फांक कर मेरे पास में इतना वक्त बच जाता है कि मैं 70 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ सकता हूँ। गोया उसकी वजह से उन्होंने रोटी खाना छोड़ दिया। लिखा है 40 साल से उनका यह मामूल था, गोया 40 साल से रोटी नहीं खाते थे, सत्तू फांकने पर किफायत करते थे। हम तो 2-4 दिन जो है ना बिरयानी जरदा खावे तो भी हमारी तबीयत जो फिर उगता जाती है, जरा कुछ टेस्ट बदलना चाहिए, और वो आखिरत के खातिर इतना मुजाहदा करते। हजरत दाऊद ताही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि वो बजाय रोटी को चबा कर खाने के पानी में भिगो दे, नरम हो जाती थी, बस मुंह में डाला उतार दी। जो गजाइयत हासिल करनी है रोटी की, वो तो उससे भी क्या हो जाती है, हासिल हो जाती है, हाँ टेस्ट खत्म हो जाता है। तो किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या चबाने में जो वक्त लगता है, मैंने हिसाब लगाया तो कुरान पाक की 50 आयतों की मैं तिलावत कर सकता हूँ। गोया उन्होंने अपनी जिंदगी की कदर व कीमत समझी। एक मरतबा एक आदमी आया उनके कमरे की छत को देख कर कहने लगा, उसकी एक कड़ी, वो वड़ी गुजराती में वड़ी कहते हैं जिसको, वो टूटी हुई है। उन्होंने कहा 20 साल से मैंने छत देखी, उनको फुर्सत ही नहीं थी, वो तो अल्लाह की याद में आखिरत की तलब में ऐसे मशगूल। आज हमारा हाल क्या है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो नौजवान हो, बूढ़े हो, औरतें हो, बच्चे हो, सारी दुनिया उसमें लगी हुई है। इस खबासत में अपनी जिंदगियों को हम बर्बाद कर, क्या है ये क्रिकेट, क्या है ये क्रिकेट, एक लानत है जो ये गया बंदों को अल्लाह की रहमत से दूर करने वाली चीज। हजरत फुकहा ने किसी खेल के जायज होने के लिए जो शर्तें लिखी है, वो सारी शर्तें कोई नहीं पाई जाती, बल्कि इसी क्रिकेट के नतीजे में क्या होता है, सट्टा खेला जाता है, और ये सटोरिये ही इन खिलाड़ियों को खरीद लेते हैं। सब जानते हैं फिक्सिंग, और उसके बावजूद इन खेलों में जब कोई जीतता है कोई हारता है तो हम आस्तीनें चढ़ाकर आपस में लड़ने लगते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ी हिमाकत क्या, हम जब जानते हैं कि इनकी ये हार और जीत पहले से तयशुदा थी, तो इस हार जीत पर हमें अपनी सलाहियतों को बर्बाद करना क्या माना रखता है, है? लेकिन है शौक, है जुनून की हद तक पहुंचा हुआ ये शौक इतना गालिब आता है कि उसके नतीजे में नमाजें कजा होती हैं, जमातें छूटती हैं, और कोई बहुत नेक साले अगर है और जमात नमाज के लिए आता है तो दौरान नमाज उसका पूरा जहन कहाँ होता है, उसी मैच के अंदर, कब मैं नमाज पूरी करूं और जाऊं। इस्लाम तो भूख की हालत में जब खाना मौजूद हो और तबीयत खाने की तरफ लगी हुई है तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता कि पहले खा लो ताकि तुम्हारा जी नमाज में लगे। बगैर खाए हुए पढ़ोगे तो जी उधर लगा हुआ होगा, कहाँ, खाने में। देखने को तो तुम नमाज पढ़ रहे हो और दिल से खाना खा रहे हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी नमाज खाना बने उसके मुकाबले में मेरा खाना नमाज बने, ये मुझे ज्यादा पसंद है। भाई आदमी जो है नमाज छोड़कर खाना खाएगा तो जी लगा हुआ होगा, जिसको नमाज का शौक होता है कब मैं खाना पूरा करूं और नमाज को जाऊं। गया खाना क्या बन गया, नमाज। अगर पहले खाएगा तो नमाज क्या बन जाएगी, खाना। तो खाना एक तबीयी जरूरत है भूख की हालत, उसके हालत में भी इस्लाम ने जब जी उधर लगा हुआ नमाज की मशगूली में इजाजत नहीं दी। तो ये खेल जिसकी वजह से 24 घंटे तो जुनून सवार, सारी सलाहियतें हुकूमत के दफातर, खानगी जो है कंपनियां और खानगी काम जो करने वाले हर उस जमाने में सब उसमें। आप किसी भी ऑफिस में चले जाएंगे गवर्नमेंट की तो कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब वही कमेंट्री सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और कोई किसी काम गया। पूरा मुल्क उसकी सारी सलाहियतें इसमें जाया और बर्बाद हो रही हैं। ये कौन सी अकलमंदी की बात है, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान पाक में सट्टे और शराब की हुरमत की जो वजह बतलाई है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युखिया बैनकुम अलअदावता वल बगदा व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, कि शैतान चाहता है शैतान युरीदु अन युखिया बैनकुम अलअदावता वल बगदा फिल खमर वल मैसर, शराब और जुबे के जरिया आपस में दुश्मनियां पैदा, ये मैच दुश्मनियां ही पैदा कराता है। उसकी वजह से क्या होता है, कौमों में आपस में लड़ाई होती है, दो गिरोह में लड़ाई होती है, जवान लड़ते हैं उसकी वजह से। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और अल्लाह की याद से और नमाज से ये चीजें रोकती हैं। ये क्रिकेट का जुनून जो है वो हमारे नौजवान क्या बूढ़ों और औरतों तक को, और उसकी वजह से जो बेशुमार खराबियां पैदा होती, हालांकि इसमें और भी खराबियां हैं। हदीस में आता है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो आदमी किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करे वो उनसे, ये तो अंग्रेजों का खेल है। और दुनिया में देखो यूरोप में बहुत सारी कौमें बसती हैं, जर्मनी की कोई टीम है क्रिकेट की, इटाली की कोई टीम है, स्विट्जरलैंड की कोई टीम है, ऑस्ट्रिया की कोई टीम है, फ्रांसी की कोई भी यूरोप ममालिक के अंदर ये यूरोपियन कौमें जो है ना वो अपनी कौमियत पर इतनी फख्र करती हैं कि वो दूसरी कौम की जबान बोलने के लिए भी तैयार है। आप जर्मनी फ्रैंकफर्ट में उतरेंगे, जबान आप अंग्रेजी में बात करेंगे, सामने वाला अंग्रेजी जानता है तो भी आपके साथ बात नहीं करेंगे। फ्रांस जाएंगे, पेरिस में उतरेंगे, आप अंग्रेजी में बोलेंगे वो अंग्रेजी समझता है तो भी जवाब नहीं देगा, फ्रांसीसी में बोलोगे तो ही जवाब देगा। उनको तो अपनी चीजों पर इतना नाज, और ये लोग इस खेल को अपनाने के लिए तैयार है। दुनिया में उन्हीं ममालिक में ये खेल चलता है जो किसी जमाने में अंग्रेजों की कॉलोनियां रहे हैं, यानी जहां अंग्रेजों का इख्तदार, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितने भी मुल्कों की टीमें हैं ना क्रिकेट की, ये वही तमाम ममालिक हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां सब अंग्रेजों का इख्तदार रहा था, हो तो गोया किसी दूसरी कौम का खेल भी इख्तियार करने के लिए तैयार। और हमें इस्लाम ने इतनी बड़ी तालीम दी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, और उसके बावजूद हमारी ईमानी गैरत हमको इन चीजों से रोकने के लिए तैयार नहीं। जरा शर्माने की जरूरत, शर्माने। वो लोग तो अपनी दुनिया की चीजों पर इतना फख्र करें और अपने दीन और ईमान पर फख्र करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो सलाहियत अता फरमाइए, अल्लाह वास्ते इसको जाया मत करो। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, अल्लाह की याद में, अल्लाह की इताअत में उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये खेल और उसमें जो वक्त बर्बाद हो रहा है, पैसे जाये हो रहे हैं, सलाहियतें बर्बाद हो रही हैं, कल को कयामत में यही लानत का सबब बनकर जहन्नम में जाने का सबब बनेगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। जरूरत है कि हम अपने औकात को सही कामों में इस्तेमाल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मिन हुस्न इस्लाम मरे तरकुहु माला, यानी एक मुसलमान के इस्लाम की खूबी यह है कि वो लायानी यानी बेकार कामों को, बेकार यानी जिसमें दुनिया का फायदा हो ना आखिरत, यहाँ तो नुकसान है, वहां तो खाली फायदा ही नुकसान नहीं, खाली फायदा नहीं है, उसको भी लायानी का उसको भी छोड़ने की जरूरत है, यहाँ तो नुकसान ही नुकसान है। तो अपनी जिंदगियों को इसमें जाया और बर्बाद करना, शेख अबुल कासिम जो इमाम अबू सौर के शागिर और हजरत सिर्री सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे होते हैं, उनका एक जुमला इमाम गजाली ने नकल किया है, अलामत व एराज़िल्लाह अनिलब्दे अन युशगिलहु फीमा ला यानी, अल्लाह के किसी बंदे से जो है एराज और बेरुखी की एक अलामत ये भी है कि अल्लाह उस आदमी को लायानी कामों में मशगूल कर दे। जो आदमी लायानी कामों में मशगूल हो, अपनी जिंदगी को उसमें बर्बाद कर रहा हो, ये दलील इस बात की कि अल्लाह उससे नाराज है। अल्लाह की रजामंदी की दलील ये होगी कि आदमी अपनी जिंदगी के औकात को सही कामों में इस्तेमाल करें। हजरत हकीमुल उम्मत के मवाइज में वाकया है, एक मरतबा हजरत जो है खजील अली सलाम हजरत इब्राहिम अदहम की मुलाकात के लिए आए। हजरत इब्राहिम अदहम हमारे सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बादशाह छोड़ दिए अल्लाह के लिए, तो हजरत खजील ने मुलाकात की, मिले फिर बस वो अपना तस्वीर लेकर उसमें मशगूल हो गए। हजरत खजील वहां बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये तो अजीब आदमी है, दुनिया में तो लोग मेरी मुलाकात की तमन्ना करते हैं और मैं खुद यहाँ मिलने के लिए आया और मैं बैठा हुआ हूँ और मेरी मुझे दाना नहीं डालते, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। तो फिर उन्होंने कहा कि आप पहचानते मुझे, कहाँ पहचानता हूँ, खिजर हैं आप, क्या लोग तो मेरी मुलाकात की तमन्ना करते, मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं करते थे। और जो है उन्होंने कहा आपकी तरफ ध्यान हो दे जो जिसको अल्लाह से फुर्सत हो, मुझे अल्लाह से फुर्सत नहीं है, मैं अल्लाह की याद में मशगूल हूँ। एक मोमिन के ईमान का तकाजा यही है कि वो अपनी जिंदगी के औकात को इस आखिरत में काम आने वाली चीजों में इस्तेमाल करे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही दी हुआ बतलाया, खियारुकुम अतवलुकुम आमालन व अहसनुकुम आमाला, कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जिनको अल्लाह ने तवील जिंदगी अता फरमाई और नेक आमाल की तौफीक अता फरमाई। हुजूर फरमाते खैरुन नास मन ताला उम्रहु व हसन अमलहु, बेहतरीन आदमी वो है जिसको अल्लाह ने लंबी जिंदगी भी दी हो और उसके आमाल भी क्या हो अच्छे। व शरुन नास मन ताला उम्रहु व सा अमलहु, और बदतरीन आदमी वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमाल बुढ़ापे में भी ऐसे गुनाहों में मुबतला हो। ये शकावत और बदबख्ती की अलामत है। चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के औकात को इन नेक कामों में, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में, अल्लाह ने जो सलाहियतें अता फरमाई है, ये जिंदगी के औकात, ये दिमाग, ये दिल, ये आंखें, ये जबान, ये कान, ये इसलिए नहीं है कि इन चर्चों में हम पढ़े, बल्कि ये सब अल्लाह ने इसलिए दिया है कि उसके जरिए से हम अल्लाह की याद में अपने आप को मशगूल करें, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का एहतमाम करें। अल्लाह ताला जिन कामों से राजी होता हो उन कामों को अंजाम दें और जिन कामों से अल्लाह नाराज होता हो उसे अपने आप को बचाएं। जरूरत है अल्लाह हमको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।